एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में दुनिया भर में बहुत से लोगों की जिंदगी बदली है। रॉबिन शर्मा की द मंक हू सोल्ड हिज फरारी,
हिंदी में कहें तो फरारी बेचने वाला सन्यासी।
हाँ, और ये किताब उस कश्मकश के बारे में है जो शायद हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। मतलब बाहर से तो सब ठीक लगता है, अच्छी नौकरी, पैसा, गाड़ी, घर,
सब कुछ।
हाँ, सब कुछ, पर अंदर कहीं एक खालीपन सा लगता है, जैसे क्या यही सब कुछ है। ये किताब इसी खोज के बारे में है, अपनी असली भूमिका, अपना असली मकसद, या कहें तो लक्ष्य ढूंढने के बारे में।
बिल्कुल सही। और देखिए, आज के टाइम में ये कितनी जरूरी हो गई है। हम सब भाग रहे हैं, बर्नआउट, स्ट्रेस, ये आम बातें हो गई हैं।
सच में? तो ये किताब पूछती है, भाई असली कामयाबी है क्या? क्या वो बैंक बैलेंस में है, या फिर मन की शांति में, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में? ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि जिंदगी सिर्फ काम करने, कमाने और खर्च करने से कहीं ज्यादा है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखक से, रॉबिन शर्मा। आज तो लीडरशिप और सेल्फ हेल्प की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है।
हाँ जी हाँ।
पर उनकी अपनी कहानी भी काफी दिलचस्प है ना।
हाँ।
वो पहले एक बहुत ही सक्सेसफुल वकील थे।
हाँ, और शायद यही चीज उनके लिखने को इतनी विश्वसनीयता देती है। उन्होंने वो हाई प्रोफाइल, ज्यादा पैसे वाली, लेकिन अंदर से खोखली जिंदगी खुद जी है। उन्हें खुद ये महसूस हुआ कि कुछ तो मिसिंग है। मतलब जीवन का कोई गहरा अर्थ होना चाहिए। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये उनका अपना जिया हुआ सच है एक तरह से।
और शायद इसी एहसास ने उन्हें वो कामयाब करियर छोड़ने पर मजबूर किया, और फिर वो निकल पड़े दुनिया भर के ज्ञान को समझने, सीखने और सिखाने, खासकर पूरब के दर्शन और पश्चिम के मनोविज्ञान को।
हाँ, और वो इस बदलाव की जीती जागती मिसाल है, एक हाई स्ट्रेस वाली प्रोफेशनल लाइफ से निकलकर एक उद्देश्य भरी सार्थक जिंदगी की तरफ।
उनकी खासियत क्या है, मतलब क्यों वो इतने पॉपुलर है?
देखिए, उनकी खासियत ये है कि वो मुश्किल लगने वाली आध्यात्मिक बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने लायक बना देते हैं। वो प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस को मिलाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं।
अच्छा,
तो ये चीज लोगों को अपील करती है।
हाँ, आसानी से समझ आती है और लगता है कि हाँ, ये किया जा सकता है।
ओके, तो अब आते हैं किताब पर। फिरारी बेचने वाला सन्यासी, नाम ही अपने आप में काफी उत्सुकता जगाता है।
बिल्कुल।
ये कहानी है जूलियन मैंटल की, एक सुपरस्टार वकील,
जिसके पास वो सब कुछ था जो दुनिया सफलता मानती है। पैसा, शोहरत, पावर, बड़ा सा घर, प्राइवेट जेट,
और हाँ, वो चमचमाती लाल फिरारी।
बिल्कुल।
लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे का सच क्या था? सच ये था कि वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, थका हुआ, बीमार, बहुत ज्यादा मोटा और बेहद दुखी। उसकी लाइफ का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका था।
और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है ना?
हाँ, वो कोर्टरूम वाला सीन। एक दिन भरी अदालत में बहस करते हुए जूलियन को मैसिव हार्ट अटैक आता है।
बापरे।
ये सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक तरह का वेकअप कॉल था, उसकी आत्मा का अलार्म था। उसे समझ आया कि जिस चीज के पीछे वो भाग रहा है, वो तो उसे खत्म कर रही है।
तो ये घटना उसे झकझोर देती है।
बिल्कुल, यहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वो सब कुछ छोड़ देता है, अपनी लॉ प्रैक्टिस, अपना घर, अपनी प्यारी फिरारी, सब बेच देता है
और निकल पड़ता है भारत, जीवन के असली मायने ढूंढने, अपनी सही भूमिका, अपना असली लक्ष्य तलाशने।
हाँ, और हिमालय की पहाड़ियों में उसे मिलते हैं सिवाना के संत,
एक रहस्यमयी समूह जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लंबी, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी जीने का राज जान लिया है।
जी, और वहीं योगी रमन नाम के एक गुरु के अंडर वो जिंदगी के कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद शक्तिशाली सिद्धांत सीखता है।
और 3 साल बाद वो लौटता है।
हाँ, एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान बनकर, जवान, ताजगी से भरा हुआ, शांत और आंखों में एक अलग ही चमक।
किताब का ज्यादातर हिस्सा क्या है?
वो दरअसल जूलियन और उसके पुराने दोस्त जॉन के बीच की बातचीत है। जूलियन वापस आकर जॉन को वो सारा ज्ञान देता है जो उसने सिवाना में सीखा।
अच्छा, और ये ज्ञान एक कहानी के जरिए समझाया गया है ना? बड़ी अजीब सी कहानी।
हाँ, वही वही कहानी इस किताब का सार है। सिवाना के संतों ने उसे एक, क्या कहते हैं, थोड़ी पहेली जैसी कहानी सुनाई थी, जिसके हर हिस्से का एक मतलब है, एक सबक है।
सुनाई वो कहानी?
हाँ हाँ, जरूर। मुझे याद है, कुछ ऐसी थी कि कल्पना कीजिए, आप एक शानदार हरे भरे शांत बगीचे में हैं।
हाँ।
और बीच में एक बहुत ऊंचा लाल रंग का लाइट हाउस है।
फिर अचानक लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और एक 9 फुट लंबा 900 पाउंड का जापानी सुमो पहलवान बाहर आता है,
जिसने सिर्फ एक गुलाबी रंग के तार का लंगोट पहना हुआ है।
हाँ हाँ, फिर वो बगीचे में टहलने लगता है, उसे एक सोने की स्टॉपवॉच मिलती है,
लेकिन जैसे ही वो उसे उठाता है वो फिसलकर गिर जाता है बेहोश।
फिर पास में खिले पीले गुलाबों की खुशबू से उसे होश आता है।
वो उठता है एनर्जी से भरा हुआ और देखता है एक रास्ता जो पूरा हीरों से जड़ा है,
और वो उस रास्ते पर चल पड़ता है और हमेशा की खुशी पा लेता है। सुनने में तो बिल्कुल बेतुकी लगती है,
है तो, लेकिन इसका हर हिस्सा, हर प्रतीक जिंदगी के एक जरूरी सिद्धांत, एक गुण को दिखाता है।
सिवाना के 7 गुण, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, वो हरा भरा बगीचा।
गुण 1, बगीचा, मन पर महारत।
हाँ, तो ये बगीचा हमारे मन, हमारे दिमाग का प्रतीक है।
एग्जैक्टली, जैसे माली बगीचे का ध्यान रखता है, खरपतवार निकालता है, अच्छे बीज बोता है, वैसे ही हमें अपने मन का ध्यान रखना है।
मतलब अगर ध्यान नहीं देंगे तो मन में नेगेटिविटी की, चिंताओं की जंगली घास उगाएगी।
हाँ, हमारे जीवन की क्वालिटी हमारे विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। बात सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहने की नहीं है, बात है अपने मन के अंदर क्या चल रहा है उसे देखने की, समझने की और उसे सही दिशा देने की।
किताब में इसके लिए कुछ टेक्निक्स भी बताई हैं।
हाँ, जैसे ऑपोजिशन थिंकिंग, जब भी कोई नेगेटिव विचार आए जानबूझकर उसका उल्टा पॉजिटिव विचार सोचो, या हार्ट ऑफ द रोज जैसी एकाग्रता बढ़ाने की तकनीक। ये मन के बगीचे की देखभाल करने जैसा है।
अच्छा, अगला प्रतीक था वो ऊंचा सा लाइट हाउस।
हाँ।
गुण 2, लाइट हाउस इज इक्वल टू उद्देश्य का पालन।
हाँ।
इसका क्या मतलब है?
लाइट हाउस क्या करता है? वो रास्ता दिखाता है, जहाजों को भटकने से बचाता है, तो ये प्रतीक है जीवन के उद्देश्य का, जिसे धर्म भी कहते हैं। सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, एक दिशा होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए जो हमें रास्ता दिखाए, हमें मोटिवेट करे। ये अपनी खास भूमिका, अपना रोल पहचानने और उसके हिसाब से जीने की बात है।
जब पता हो कि कहाँ जाना है और क्यों, तो जिंदगी में एक मतलब आता है ना?
बिल्कुल, तभी असली संतुष्टि मिलती है। किताब इसके लिए लक्ष्य बनाने और उन्हें पाने की 5 स्टेप वाली विधि भी बताती है।
ओके, फिर आता है वो सुमो पहलवान। गुण 3, सुमो पहलवान केजिन का अभ्यास। ये थोड़ा अजीब है।
हाँ हाँ हाँ, सुमो पहलवान प्रतीक है काइजन का। ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है निरंतर सुधार, लगातार बेहतरी।
मतलब
ये कि बड़ी कामयाबी या मास्टरी रातों रात नहीं मिलती, वो रोजाना किए गए छोटे छोटे लगातार सुधारों का नतीजा होती है, इंच बाय इंच।
जैसे वो सुमो पहलवान सालों की प्रैक्टिस और अनुशासन से इतना ताकतवर बनता है।
बिल्कुल, हमें भी रोज खुद पर काम करना होगा, खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना होगा। आत्म अनुशासन और लगातार कोशिश ही असली ताकत है। किताब इसे 10 रिचुअल्स ऑफ रेडियंट लिविंग के जरिए समझाती है, जैसे सुबह जल्दी उठना, कुछ पढ़ना, शांत रहना वगैरह।
और उसने पहना था वो गुलाबी तार का लंगोट।
गुण 4, तार का लंगोट अनुशासन। हाँ, वो तार प्रतीक है इच्छा शक्ति का, सेल्फ डिसिप्लिन का। सोचिए, एक पतला तार आसानी से टूट जाता है।
हाँ।
पर जब बहुत सारे तार मिल जाते हैं तो वो एक मजबूत केबल बन जाते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल है।
अच्छा,
तो वैसे ही अनुशासन के छोटे छोटे काम जब रोज किए जाते हैं
तो वो हमारी इच्छा शक्ति को, हमारे विल पावर को मजबूत बनाते हैं। विल पावर एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करो उतनी मजबूत होती है।
और अनुशासन का मतलब बनना नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुशासन हमें बुरी आदतों से, कमजोरियों से आजाद करता है। ये हमें वो करने की ताकत देता है जो हमें करना चाहिए, भले ही हमारा मन न कर रहा हो।
ये दिलचस्प है। फिर उसे मिली थी वो सोने की स्टॉपवॉच।
गुणे 5, स्टॉपवॉच समय का सम्मान।
ये शायद सबसे सीधा और जरूरी सबक है। स्टॉपवॉच यानी समय, हमारा सबसे कीमती रिसोर्स,
जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता,
कभी नहीं। हमें अपने समय का मालिक बनना सीखना होगा। किताब कहती है डेथ बेड मेंटालिटी अपनाओ।
मतलब
सोचो कि अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो आप क्या करेंगे, क्या चीजें सबसे जरूरी होंगी। इससे फालतू चीजें अपने आप हट जाती हैं,
प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं।
हाँ, और 80-20 रूल भी है।
हाँ।
अपने 80% नतीजे देने वाले 20% कामों पर फोकस करो, और सबसे जरूरी उन चीजों को ना कहना सीखो जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है, जो आपका समय बर्बाद करती हैं।
फिर वो बेहोश हुआ था और गुलाबों की खुशबू से जागा था।
गुरछे गुलाब बराबर निस्वार्थ सेवा।
हाँ, वो खुशबूदार पीले गुलाब
वो प्रतीक हैं दूसरों की मदद करने के गुण का, निस्वार्थ सेवा का।
कैसे?
देखिए, जीवन का असली मतलब और गहरी खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं
बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के।
हाँ, जब हम दूसरों की जिंदगी में अच्छाई की, दया की खुशबू फैलाते हैं तो हमारा अपना जीवन भी बेहतर और सार्थक बनता है। ये अपनी सामाजिक भूमिका को निभाना है, रोज छोटे छोटे दयालु काम करना, रिश्तों को बेहतर बनाना,
और आखिर में वो हीरो से जड़ा रास्ता,
गुण साथ, हीरों का पथ, वर्तमान में जीना।
वो हीरे क्या है?
वो है वर्तमान के अनमोल पल। हम अक्सर या तो बीते कल के पछतावों में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंताओं में, और इस चक्कर में आज को, अभी को जीना भूल जाते हैं।
सही बात है।
खुशी कोई दूर की मंजिल नहीं है जो हमें भविष्य में मिलेगी, खुशी यही है इसी पल में अगर हम उसे देखना चाहें। इस जिंदगी की यात्रा का आनंद लेना, हर छोटे बड़े अनुभव को महसूस करना, यही असली खुशी है।
इसके लिए क्या कर सकते हैं?
कृतज्ञता का अभ्यास करें, अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों की सराहना करें, अपने लोगों के साथ पूरी तरह मौजूद रहें जब आप उनके साथ हों, यही वो हीरे हैं जो रास्ते में बिखरे पड़े।
वाह, मतलब एक अजीब सी कहानी और उसमें जिंदगी जीने के इतने गहरे राज छिपे हैं, कमाल है।
हाँ, तो अगर हम इन सब बातों को देखें तो किताब के जो मुख्य संदेश हैं वो क्या निकलते हैं?
पहला तो मुझे लगता यही है कि बाहरी सफलता ही सब कुछ नहीं है, वो फिरारी सिर्फ एक सिंबल है, असली दौलत तो मन की शांति, सेहत और अच्छे रिश्ते हैं। जूलियन के पास बाहर सब था पर अंदर खालीपन था।
बिल्कुल। दूसरा, मन की ताकत। हमारा बाहरी जीवन हमारे अंदर के विचारों का प्रतिबिंब है, हम अपने विचार चुन सकते हैं और इस तरह अपनी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं। वो बगीचे वाली बात याद है ना, हमें अपने मन का माली बनना है।
हाँ, तीसरा, एक उद्देश्य का होना, अपना धर्म पहचानना। बिना लक्ष्य के जिंदगी एक नाव की तरह है, बिना पतवार के। अपनी असली भूमिका, अपना रोल क्या है, अपना लक्ष्य क्या है, ये जानना और उसके लिए जीना, इसी से संतुष्टि मिलती है।
सही कहा, यह सिर्फ नौकरी करके पैसा कमाने से कई बढ़कर है, अपना क्यों ढूंढना है।
चौथा, लगातार सुधार और अनुशासन, केजन। महानता एक दिन में नहीं आती, वो रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है, और अनुशासन बंधन नहीं, आजादी है।
और पांचवा, सेवा और वर्तमान में जीना। असली खुशी दूसरों को देने में है, और जिंदगी अभी है, इसी पल में, कल किसने देखा है, हर पल को पूरी तरह जीना, उसकी सराहना करना।
इस किताब में कुछ लाइनें तो ऐसी हैं जो सीधे जैसे हिट करती हैं।
हाँ, बहुत सारी हैं। जैसे वो कहते हैं, जीवन का उद्देश्य उद्देश्यपूर्ण जीवन है। कितना सरल है पर कितना गहरा। क्या हम सच में एक मकसद से जी रहे हैं?
या फिर वो मन के बगीचे वाली बात, अगर आप अपने मन के बगीचे की देखभाल नहीं करेंगे तो खरपतवार उगाएगी। ये एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। हमारी मानसिक शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर के मैनेजमेंट पर निर्भर करती है।
एक और जो मुझे बहुत पसंद है, खुद में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश है जो आप कभी करेंगे। हम अक्सर बाहरी चीजों पर पैसा समय लगाते हैं, घर गाड़ी, पर खुद को बेहतर बनाने पर कितना लगाते हैं, जबकि असली एसेट तो हम खुद हैं।
सही बात। और समय के बारे में, समय रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। ये तो रोज याद रखने वाली बात है, खासकर आजकल की भागदौड़ में।
और शायद सबसे अहम बात, बाहरी सफलता का कोई मतलब नहीं जब तक कि आपके भीतर भी सफलता ना हो। अल्टीमेटली सच्ची कामयाबी अंदर से आती है, बाहर की चीजें तो आती जाती रहती हैं।
ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इंस्पायरिंग भी है, पर सवाल वही है, रोज की जिंदगी में, अपनी भागदौड़ में इसे उतारें कैसे, प्रैक्टिकली कैसे करें?
हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है और किताब इसका भी जवाब देती है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी हैं। जैसे मन पर काबू पाने के लिए रोज बस 5 मिनट निकालिए किसी एक चीज पर ध्यान लगाने के लिए, अपनी सांस पर या किसी मोमबत्ती की लौ पर।
अच्छा।
या जब कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उसे पहचानिए और तुरंत एक पॉजिटिव ख्याल से बदल दीजिए। शुरुआत में कोशिश करनी पड़ेगी, फिर आदत बन जाएगी।
उद्देश्य के लिए क्या कर सकते हैं रोजमर्रा में?
अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर रात को सोने से पहले बस 2 मिनट सोचिए कि आज आपने ऐसा क्या किया जो आपको आपके बड़े लक्ष्य के थोड़ा करीब ले गया। अपनी भूमिका के बारे में सोचिए।
केजन यानी निरंतर सुधार के लिए।
कोई एक छोटी सी अच्छी आदत चुनिए, बहुत छोटी, जैसे रोज 10 पेज पढ़ना या 10 मिनट पहले उठना, और उसे सिर्फ 21 दिन तक लगातार करने का टारगेट रखिए। कहते हैं 21 दिन में आदत बन जाती है।
और अनुशासन,
रोज खुद से किया एक छोटा सा वादा पूरा कीजिए। जैसे तय किया कि सुबह उठकर बिस्तर ठीक करेंगे, तो बस कर डालिए। ये छोटी छोटी जीतें आपकी विल पावर को बढ़ाएंगी।
समय के लिए तो शायद सबसे पहले ये देखना होगा कि समय जा कहां रहा है।
हाँ, एक हफ्ते का टाइम लॉक बनाकर देखिए, फिर 80-20 रूल लगाकर देखिए कि कौन से काम सबसे जरूरी हैं, और प्यार से लेकिन मजबूती से ना कहना सीखिए उन चीजों को जो जरूरी नहीं है।
और सेवा और वर्तमान में जीने के लिए,
सेवा के लिए रोज किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कीजिए। एक तारीफ, एक छोटी सी मदद, एक मुस्कान, कुछ भी। और वर्तमान में जीने के लिए रोज रात को 3 ऐसी चीजें याद कीजिए या लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। खाना खाते वक्त खाने का स्वाद लीजिए फोन साइड में रखकर।
मतलब छोटे छोटे बदलाव लेकिन लगातार।
हाँ, कुंजी लगातार में है, कंसिस्टेंसी इसकी।
तो इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ा सबक या सबसे पसंदीदा बात क्या रही?
मेरे लिए शायद वो काइज़ेन का आइडिया, निरंतर सुधार। ये एहसास कि हमें एक ही दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस रोज थोड़ा सा 1% बेहतर बनना है, ये बहुत प्रैक्टिकल और करने लायक लगता है, कोई प्रेशर नहीं।
और मेरे लिए शायद ये बात कि एक अच्छी सार्थक जिंदगी कोई लॉटरी नहीं है जो लग जाती है, ये हमारे रोज के चुनावों का, हमारी आदतों का नतीजा है। हम सब अपने जीवन के शिल्पकार हैं, ये पावर हमारे हाथ में है, ये एहसास बहुत एम्पावरिंग है।
तो आखिर में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। ये जो सारे सिद्धांत हैं, मन पर काबू, उद्देश्य, अनुशासन, सेवा, वर्तमान में जीना, क्या ये सिर्फ जिंदगी में बैलेंस लाने या थोड़ी खुशी पाने के तरीके हैं,
या फिर ये हमें सफलता की एक बिल्कुल अलग परिभाषा की ओर ले जाते हैं? एक ऐसी सफलता जो सिर्फ बैंक बैलेंस या पद से नहीं नापी जाती, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि हमने कितना उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया, अपनी क्षमताओं का कितना विकास किया और दूसरों के जीवन में क्या सकारात्मक योगदान दिया। मतलब अपनी असली भूमिका, अपना रोल कितना अच्छे से निभाया, इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।